साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा,
साथ तुम्हारा प्रभु कितना प्यारा।
मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा,
साथ तुम्हारा प्रभु।
ओम शांति। आज के प्रातःकालीन सत्र में मोहन भाई का हार्दिक स्वागत है। आप बाबा मम्मा से भी खूब पालना ली हुई है। बाबा ने ही कैसे आपको चुना और सेवाओं में आप समर्पित हुए, वह भी खूब अच्छा अनुभव है। लेकिन आज हमारे बीच आप रखेंगे अंत मते सो गते। बहुत अच्छा विषय है कि बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे अंत मते सो गति, किस प्रकार से अंत में किसकी स्मृति होनी चाहिए तो गति हो सकती है, वरना हम जानते हैं कि अन्य किसी की याद आई तो बाबा कहते वल्वल योनी माना है। तो किस प्रकार से हमारी वह स्थिति बने, किस प्रकार सिर्फ हमें उस समय बाबा ही याद रहे, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे मोहन भाई।
ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर के उस रीति से ओम शांति कहेंगे जैसा यज्ञ में प्रारंभ में हम सब ने सुना है बोला करते थे। अंदर एक गहरी श्वास लेंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, फिर दूसरा श्वास लेंगे और उसको छोड़ते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ओ शांति की ये ध्वनि ही है जो कि आज का विषय है, उसको पूरी तरह चरितार्थ करती है कि अंत में बिल्कुल शांति की स्थिति में हो, हम कुछ भी ना अंदर का कोलाहल ना हो, बाहर तो भले कोलाहल हो न भी हो लेकिन अंदर बिल्कुल शांति हो, तो उस स्थिति में ही जब आत्मा शरीर से जाती है तो उसकी गति हो जाती है, सदगति हो जाती है। बाबा ने हम बच्चों को कराया है, बताया भी है, अनुभव भी बाबा समय प्रति समय कराते हैं। हम लोगों ने कोर्स तो कर लिया, शुरू में जब आते हैं ज्ञान में 7 दिन का कोर्स हो जाता है, लेकिन वो 7 दिन तो कभी खत्म होते हैं, 7 दिन की ही जिंदगी है, सोमवार से रविवार तक पूरा, तो वो कोर्स तो चल रहा है। अभी उसमें भी कौन सा कोर्स चल रहा है, बाबा ने बताया कि उसको रिवीजन कोर्स भी हो गया, हो रहा है या हो गया, और फिर रियलाइजेशन, और फिर अब है लिबरेशन कोर्स। रिवीजन कोर्स भी हो गया और रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है साथ साथ, लेकिन लिबरेशन कोर्स यानी कि जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं, कमी कमजोरियां हैं, उन सबसे लिबरेशन मुक्ति। तो वो कैसे हो? तो अंतमति सो गति, अंत के क्षण का तो हम सबको किसी को मालूम ही नहीं है क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, लेकिन गति का तो मालूम है, गति सदगति। तो जिसकी अभी तक गति सदगति बिल्कुल बहुत अच्छी हुई है, उसका अगर हम रोल मॉडल लेकर के चलेंगे तो क्या होगा, अंत में हमारी भी वैसी ही हमें मति रखनी पड़ेगी जिससे हमारी भी गति वैसी हो जाए। अंत मति सो गति। आज की मुरली सबने सुनी? आज की मुरली में क्या वरदान क्या था? और कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? भावना वाले। तो भावना वाले ही भाग्यवान बच्चे। तो इसलिए गति का मतलब बहुत भाग्यवान बच्चे, जिनकी बहुत अच्छी गति सदगति अंत में होती है, सबसे ज्यादा भाग्यवान तो वही हैं। तो इसीलिए, और वो कौन से बच्चे? जो भावना वाले। इसीलिए बाबा को बुद्धि वाले या और कोई बच्चे बहुत, जो दुनिया वाले जिन्हें सौभाग्यशाली कहते हैं, धन धान्य से परिपूर्ण, स्वास्थ्य से नहीं, जिसके अंदर अगर भावना है बाबा के प्रति, चाहे बिल्कुल साधारण है, वो बाबा को अति प्रिय है। क्योंकि भावना से ही लौकिक दुनिया में बोलते हैं, भावना जितनी जाकी रही, भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, लौकिक में भी दुनिया में बोलते हैं, रामायण में भी। तो हमारी भी बस भावना में कभी भी कोई कमी ना आए। जो यज्ञ के प्रति भावना है हमारी, बाबा के प्रति, दादियों के प्रति, बड़े भाई बहनों के प्रति, जो हमारा सिस्टम है उसके प्रति, तो वो कोई भी प्रकार का संशय उठना माने भावना में कमी होना। इसीलिए बाबा ने कहा कि भावना जो है वो ही भाग्यवान बनाती है। तो भावना कैसे हमारी बहुत अति ऊंची से ऊंची रहे, और जो बाबा ने कहा अंत मते सो गति, तो अभी तक यज्ञ में इतनी आत्माएं हैं, इतने गए भी हैं, तो सबसे अच्छी गति सदगति किसकी हुई है? ब्रह्मा बाबा की। बड़े होशियार हैं सब, बहुत अच्छा। तो मैं आपको खास वो बात बताना चाहता हूं जो आज के विषय के अनुरूप है कि अंतमते सो गति, क्योंकि मुझे वैसे तो बाबा के साथ रहने का बहुत मौका मिला, ब्रह्मा बाबा के साथ 1962 में ज्ञान में आए, और 1969 तक जब तक बाबा ने शरीर छोड़ा, बहुत बार बाबा से मिले होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है कि अंतिम दो दिनों में 17 और 18 जनवरी को जब बाबा कर्मातीत अवस्था के निकट थे, और जब बाबा ने 18 जनवरी को शरीर छोड़ा, तो दो दिन तक बाबा की कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त स्थिति देखने का इन आंखों से मौका मिला, और जो जो बातें देखी उन्हीं को मैं खास थोड़ा शेयर करूंगा, समय कम है, जिससे कि वो शेयर करके हमारे माइंड में आ जाए कि हमें भी उन परिस्थितियों में जब ब्रह्मा बाबा अंत समय में बाबा ने शरीर छोड़ा, क्या स्थिति थी, कैसे उन्होंने वो स्थिति बनाई और इस रीति से उनकी गति सदगति हुई, तो वो एक बात को हम एक तो ध्यान से देखते चलेंगे। एक तो पहले कि आदि से लेकर हमारा बाबा ने कहा है कि जब से ज्ञान में आपका जन्म होता है तब से जैसे भाग्य की रेखा हमारी शुरू हो जाती है। तो ब्रह्मा बाबा के बिना कब ज्ञान का जन्म हुआ, किस साल में हुआ, 1936-37 में, तो तब से ही, उस समय तो हम लोगों ने देखा नहीं, थे ही नहीं, लेकिन जब से हमारा जन्म हुआ, हर एक का अपना अपना ज्ञान का जन्म, तब से हमारी कैसी स्थिति रही है उसके आधार पर ही अंतमति सोगति अधिकतर निश्चित होती है। इसीलिए और किसी का न देखें, न कंपैरिजन करें, अरे हम भी कुछ साल पहले ज्ञान में आ गए होते या हमारी भी ये स्थिति होती, हम भी प्रवृत्ति में नहीं होते, कुमार कुमारी होते, हम भी यज्ञ में समर्पित होते, नहीं, जैसी हमारी स्थिति है हमारे लिए वो ही बेस्ट है। इसके लिए बाबा कई बार क्या कहता है कि बच्चे अगर तुम पहले ज्ञान में आ गए होते तो क्या होता, कुछ भी हो सकता था। तो इसीलिए जो है बाबा जानी जाननहार है, जिसमें हमारा बेस्ट है वो ही बाबा ने बताया है। तो इसीलिए हम खास करके वो एक तो वर्णन करना चाहते हैं जो बाबा की अंतिम दो दिनों की स्थिति थी, शायद कईयों ने कुछ सुना भी हो उसमें, लेकिन मुख्य उस वैसी स्थिति हम कैसे बनाए। तो एक तो हमने ये देखा कि बाबा का 1962-63 में जो बाबा थे ब्रह्मा बाबा, और 1969 में जो बाबा थे, बहुत रात दिन का फर्क हो गया था बाबा में। बाबा भी व्यक्तिगत पुरुषार्थी था, बाबा को कई बार ना खांसी आती थी, बाबा हंसी में शिव बाबा को कहते थे, बाबा मेरा इस खांसी से पीछा छुड़ाओ, तो शिव बाबा क्या कहते थे, ये जो है हर आत्मा का अपना अपना हिसाब है। तो ब्रह्मा बाबा कहते थे वो तो ठीक है बाबा, लेकिन मैं तो अकेला ही बच्चा हूँ आपका, आपने इस तन का आधार लिया है तो थोड़ा तो कंसेशन करो। तो शिव बाबा क्या बोलते थे, कि नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ कंसेशन करूंगा तो मेरे तो सारे बच्चे हैं, हर एक के साथ कंसेशन करना पड़ेगा, इसलिए हर एक को अपना कर्म भोग चुक तो खुद ही करना है। तो इसीलिए ये एक तो निश्चित जान ले, हाँ वो कर्म भोग सूली से कांटा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, अनुभव ऐसा रहेगा जैसे कर्म भोग है ही नहीं, लेकिन भोगना तो भोगनी पड़ेगी, चुकतू तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए ब्रह्मा बाबा पहले जब हम लोग मिलते थे 62-63 में, तो यहाँ पर या तो ब्रह्मा बाबा झोपड़ी में मिलते थे, या बाबा अपने कमरे में, या हिस्ट्री हॉल में, तीन जगह हुआ करता था। कभी कभी बाबा टहल रहे होते, उसी समय बच्चे आ जाते तो क्या होता था, उस समय भी बाबा, अरे बच्चे आओ आओ बच्चे, यूं बाबा हाथ फैला देता था, आओ बच्चे, और बस हम लोग चुंबक की तरह खींचते हुए बाबा की बाह में आ जाते थे वन बाय वन। तो एक अगर आता था, जैसे ही आता था विदेही हो जाता था, अशरीरी हो जाता था, जैसे बाबा दृष्टि देते थे एकदम अशरीरी। क्यों? क्योंकि बाबा ने दृष्टि में इतना पक्का किया हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा ना, डायरी में लिख लिख के पक्का किया था, हाँ मैं आत्मा हूं। और ये तो भले हमने लिख लिख के पक्का किया हो न किया हो, लेकिन पुरुषार्थ तो हम लोगों का भी वैसा ही है जो ब्रह्मा बाबा ने किया। तो हम एक तो अपने को ये देखें कि कि हम भी किसी भी आत्मा को देखते हैं, दृष्टि देते हैं, वो आत्मा भी विदेही हो जाती है कि नहीं। एक एक चीज को चेक करते चलें, जो आज 8-10 बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दृष्टि दी, वो आत्मा देह भान में ना आए देख के कि अरे ये वो भाई है या वो बहन है जिसने ऐसा व्यवहार मेरे साथ किया था, उसके मन में कोई निगेटिविटी संकल्प की ना आए, बल्कि ये कि हाँ यही आत्माएं हैं जिनसे जो मेरे इष्ट देव इष्ट देवी हैं, ये जितना हर एक के मन में हमारे प्रति होगा तो क्या होगा, वो आत्मा भी वैसे ही अनुभव करेगी जैसे आज की मुरली में था। उसकी भावना अगर हमारे प्रति महान होगी तो जैसे उसी रीति से वो हमें भगवान देखेगी, यानी अपनी इष्ट देव या इष्ट देवी देखेगी। और जैसी उसकी भावना यहाँ होगी, वो ही भावना ड्रामा अनुसार जब द्वापर युग से हमारी मूर्तियां बनेंगी, मंदिर बनेंगे, उनकी भीड़ लगेगी हमारे मंदिरों के सामने हमारी मूर्तियों, तो हमारी मूर्ति में भी वो ही भावना देखेंगे जिस भावना से वो आज संगम युग में हमें देख रहे हैं। इसीलिए आवश्यकता यह है हमारे प्रति किसी की भी भावना को हम दूषित ना होने दें, खंडित ना होने दें, बस हमारा व्यवहार ऐसा हो, इतना प्रेममय हो कि बस उसको ये लगे कि हाँ यही इन्हीं के द्वारा मेरा उद्धार होना है। और वो कैसे होगा, तो यहां पर जैसा ही हमारा व्यवहार, तो बाबा का भी ना, ब्रह्मा बाबा का भी पहले दिन से ही जब भी कोई मिलता था एक तो उसे ये अनुभूति होती थी, उसके बाद बाबा से मिलके बाबा जब अशरीरी हो जाते थे बाबा ऐसे थप 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 करके कहते थे हाँ बच्चे आओ आओ, और फिर आत्मा कोई जाती नहीं है, आती है तो कॉन्शियसनेस जैसे विड्रॉ हो जाती है, आत्मा तो शरीर में ही रहती है, तो इसीलिए उसके बाद फिर टोली खिलाते थे बाबा, हालचाल पूछते थे, फिर एक जाता था दूसरा आता था, और अंत में के 2-3 साल में तो बाबा ऐसे गोद भी नहीं देते थे, मिलते भी ज्यादा नहीं, दृष्टि से ही अधिकतर बच्चों को निहाल करते थे। तो ऐसे ही अभी जो ब्रह्मा बाबा के साथ हम बच्चों ने अनुभव किया, वही हमारे द्वारा आने वाले सभी बच्चों को अनुभव करना है। हम उनके सब ब्रह्मा बाबा हैं, माता पिता हैं, हमारी राजधानी जैसे ब्रह्मा बाबा की राजधानी में हम सब आने वाले हैं, ऐसे हरेक की अपनी अपनी राजधानी है, जो बाबा कह रहा है स्थापन, जिसका उद्धार मेरे द्वारा होना है उसका उद्धार दूसरे के द्वारा नहीं हो सकता। उसकी भावना ही ड्रामा अनुसार हरेक की जो प्रजा होगी उसकी भावना उसी में बैठेगी, दूसरा चाहे जितना भी हो आगे उसमें भावना नहीं बैठेगी। इसीलिए एक तो ये जो बाबा ने बताया कि बाबा के द्वारा हम बच्चों को जो अनुभव हुआ वो उसके बाद परिवर्तन क्या हुआ, तो शुरू में बाबा समय देते थे आओ बच्चे अपनी जीवन कहानी लिखो, बाबा पढ़ते थे कुछ कुछ सुनते थे, कोई खास बात हो बताओ ऐसे वो आधा माफ हो जाएगा, माफी हो जाता था, एकदम हल्कापन एकदम इतना महसूस होता था, ऐसा बहुत भाई बहनों का अनुभव है। तो इसीलिए हम लोगों से तो बस जब बाबा को लिख करके देते थे बाबा बस फट फट, बाबा का ऐसा होता था जीवन जहां बाबा को शिक्षा देनी होती थी वहीं पर ही नजर जाती थी, उसमें उस पन्ने पर रुकते थे और अच्छा बच्चे ये लिखा है ऐसा उसका क्लैरिफिकेशन पूछते थे, नहीं तो बस 25-30 सेकंड में ही पूरी की पूरी जीवन कहानी बाबा पढ़ लेते थे। तो बात क्या है कि हमारी भी दृष्टि ऐसी तीक्ष्ण हो जाएगी कि जो भी आत्मा आएगी हम उसे नजरों से पढ़ करके उसको पहचान लेंगे, कैसी आत्मा है, कौन सी है और किस इच्छा से आई है, वही शिक्षा दे करके उसको बस वो आत्मा संतुष्टता का अनुभव करके चली जाएगी। تو ایک تو ہمیں یہ کب ہوگا, جب ہم ہمارے اندر دوسرے کی اچھاؤں کو ہم تب پڑھ سکیں گے جب ہم خود اچھا ماترم اویدیا, ہمارے اندر ہی بہت اچھائیں ہوئی تو دوسرے کی اچھاؤں کو ہم پڑھ کے ان کی پورتی نہیں کر سکتے. تو خاص یہ ہم نے بعد میں انوبھو کیا کہ جب 62-63 میں آتے تھے, جب بیچ میں 65-66 میں آتے تھے تو بابا بہت کم ٹائم دیتے تھے, اور جب ہم لاسٹ میں آئے 17 جنوری 1969 کو تو بس وہاں پر آسام میں ہم پوسٹڈ تھے, انجینئرنگ کرنے کے بعد آسام میں تھے, وہاں سے آئے تھے تو بس وہاں پر بابا نے سے جب ملے کہ بابا کو یہ بتائیں گے سماچار, یہ سیوا کا سماچار, یہ پرشارت کا سماچار, یہ اپنی استھتی کا سماچار, الگ الگ ٹائم میں لگ بھگ 6-7 بار ان 2 دنوں میں ملنا ہوا, لیکن بابا بس درشتی دیتے تھے اور درشتی دے کے بابا کہتے اچھا بچے یہ پوچھنے آئے ہو ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا, یعنی ہمیں ایک اکشر بھی بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور بابا من کی پوری بات کا وہ پرشن بھی بتا دیتے تھے اور اس کا سمادھان بھی کر دیتے تھے. تو انت متی سو گتی کا ایک یہ سمٹم ہے سب سے بڑا کہ ہم آتما جب اپنی انتم کرماتیت استھتی کے نکٹ ہوں گی تو اس سمے جو بھی آتمائیں ہمارے سمکھ آئیں گی ہم ان کی استھتی کو پڑھ کے اس کا ترنت سمادھان کر سکیں گے. ہم سمادھان سوروپ تب بن سکیں گے جب خود ہی ہم اپنے اندر سمادھان مورت ہوں گے, ہمارے من میں ہی کوئی پرشن نہیں ہوگا. اگر ہمارے ہی پرشن ہوا تو دوسرا کوئی پرشن لے کے آئے گا تو ہمارا پرشن اس سے مکس ہو جائے گا, ہم اس کا سمادھان ہی نہیں کر سکیں گے. تو ہماری سلیٹ بالکل کلین ہونی چاہیے, خود اچھا ماترم اویدیا. تو ایسا ہے یہ من, تو یہ پہلا ہے کہ اتنا تک ہم اپنے من کے سنکلپوں کو جیت لیں کہ ہمارے اندر جو بھی ویکتی آئے ہمارے سموک ہم اس کے سنکلپوں کو پڑھ کے اچھا بس تب تم, یا وہ وردان کیا ہوتا ہے جب بھکت کو منوکامنا پورن ہوتی ہے تو کیا بھگوان کے منہ سے نکلتا ہے تتھاستو. جو بھی سنکلپ اچھا لے کے آئیں گے ہمارے بھکت, یہاں پر تو ہماری بھائی بہن ہوں گے ہمارے اور بہت سارے جو آئیں گے انت میں, لیکن وہی ہمارے دواپر یوگ سے بھکت بنیں گے, تو یہاں پر جب ہم ان کی اچھاؤں کو پورن کریں گے تبھی تو وہ ہمارے بڑے بڑے مندر بڑی بڑی مورتیاں بنائیں گے اور تب دواپر یوگ سے وہی پوجا ہوگی اور یہاں پر ہم ان کی اچھاؤں کو پورن کر سکیں گے تتھاستو. تو دواپر یوگ سے ہماری مورتیوں کے آگے بھی وہ وہی اچھاؤں کا پورتی کا انوبھو لے کر کے جائیں گے. تو ابھی ہمیں بس یہ دیکھنا ہے بابا نے کہا کوئی بھی آتما آئے سنتوشٹ ہو کے جائے, پیاسی آتما آئے اسے آپ اگر بھوجن دو گے 56 پرکار کے تو سنتوشٹی نہیں ہوگی جو پانی کی 2 بوند سے ہوگی. تو کون سا ویکتی کیا اچھا لے کر کے آیا ہے وہ تو برہما بابا کا یہی ہم نے اس دن ایک تو انوبھو کیا, پہلا دوسرا یہ انوبھو تھا کہ من کے اندر جو بھی بھاؤ ہوتے تھے پڑھ کے بابا ترنت سمادھان کر دیتے تھے. اور کیا ہوتا تھا دیکھا, پہلے بھی بتایا تھا انت متی سو گتی. تو انت میں متی ہماری ایسی شریشٹھ ہو جیسا بہن جی ابھی بتا رہے تھے انت میں اچھا نا, بس کوئی اور نہ رہے. تو ابھی سے ہی ہمارا ابھی پرشارت ہے, ہم پرشارت کرتے ہیں, بھٹی میں بھی آئے ہیں, مرلی سنتے ہیں, گیان یوگ دانا سب چلتا ہے ہمارا, لیکن ساتھ ساتھ کہیں کہیں لیکیج بھی ہو جاتا ہے. بس صبح سے بھرتے ہیں, کوئی نہ کوئی پرستھتی آئی, کوئی سمبندوں میں کٹوتا آئی, کہیں پر کوئی بات ہو گئی تو کچھ شکتیاں لیکیج ہو جاتی. اس سے کیا ہے جتنا سارے دن بھر کا جو نیٹ اماؤنٹ ہے نا वो सुबह से जो शुरू हुआ शाम तक बहुत कम शक्तियों का भंडार जमा हो पाता है। एक तो ये देखते चले, इसके लिए अंत मते सो गति में एक सबसे मुख्य बात होगी, वो कौन सी? साक्षी दृष्टा। परिस्थितियां बहुत आएंगी हमारे सामने, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो जो साक्षी दृष्टा हो। साक्षी दृष्टा स्थिति जब होगी तो क्या होगा? हाँ, बाहर अति हलचल हो लेकिन अंदर अति अचल हो, ये स्थिति होनी चाहिए। हलचल जितनी ज्यादा हलचल उतना ही हम अंदर अचल रहे, तो उससे क्या होगा कि हमारे प्रभाव जो है ना, जो गीता में कहा है सच्चे योगी के क्या लक्षण है, मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख हानि लाभ सब में समान, तो जितनी भी हलचल होगी लेकिन हमारी स्थिति अटल होगी। तो इस ये बाबा का प्रत्यक्ष देखने को मिलता था। लास्ट में कुछ सालों में हमने देखा बाबा से जब मिलते थे, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती थी, कोई भी कलकत्ते में मेला हुआ था, वहां आग लगा दी थी आर्य समाजों ने और काफी सारा नुकसान हुआ। बस वकील लोग काफी, हमारे दो तीन बड़े बड़े वकील भाई लोग थे, उन्होंने कहा बाबा हमारे पास प्रूफ है, हम केस करना चाहिए, हमारे पास उनकी वीडियो है ये। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, उन्हें मालूम नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, बाप कभी भी बच्चे पर केस नहीं कर सकता, इसीलिए हाँ आगे से सावधानी रखो, कभी प्रदर्शनी मेला करो, इंश्योरेंस करा दो, सावधानी रखो सिक्योरिटी की आदि आदि। लेकिन देखते थे, ये तो एक ही बात है, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती थी यज्ञ में ऊपर नीचे, लेकिन बाबा की स्थिति सदा अचल अटल, साक्षी दृष्टा। तो ये स्थिति कैसे रहेगी साक्षी दृष्टा की? कहना तो बड़ा आसान है हम साक्षी दृष्टा रहे, तो उसमें मुख्य कुछ तीन चार बातों का ख्याल रखें। एक तो ये दृष्टा का है ना, तो आत्मा जो है वो है दृष्टा और ये आंख है दृष्टि। तो ये दृष्टि है, इसके द्वारा दृष्टा देख रहा है, साक्षी दृष्टि नहीं बोला, कहने को हम बोलते थे भाई आंख के द्वारा ये, लेकिन आंख खुद नहीं देखती, आंख के द्वारा देखने वाली आत्मा है। एक है दृष्टा, दूसरी है दृष्टि। ये खिड़की, जैसे मकान में खिड़की होती है, खिड़की खुद नहीं देखती, खिड़की में जो खड़ा होता है वो देखता है खिड़की के थ्रू, ऐसे ही एक दृष्टा आत्मा, ये दृष्टि। तीसरी चीज दृश्य, जो भी बाहर का दृश्य है, संबंध का है, दुनिया का कोई भी जो हलचल में लाता है, तो दृश्य मैं दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा ये दृश्य देख रही हूं, ये स्थिति हो। तो तीन बातें तो ये हुई, दृष्टा दृष्टि दृश्य। चौथी चीज हमारा दृष्टिकोण कैसा है, कैसा हमारा एटीट्यूड है, क्योंकि कोई भी चीज कहते हैं अच्छी या वो बुरी नहीं होती, बल्कि उसे किस दृष्टिकोण से किस देखा जाता है वैसी वो चीज हमें अनुभव होती है। हमने अगर लाल चश्मा लगाया होगा सारी दुनिया लाल लाल नजर आएगी, तो हमारा दृष्टिकोण कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, वो उस बात पर निर्भर करता है। तो चौथी चीज है दृष्टिकोण, कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, सकारात्मक। ये तो मोटा मोटी बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले दृष्टिकोण भी, और पहले इसी को पूरा कर लें। और पांचवी चीज है दृष्टांत। दृष्टांत माने इतिहास, हिस्ट्री। तो जितने हम यहां साक्षी दृष्टा होंगे उतना ही हमारा इतिहास जो लिखा जाएगा भक्ति मार्ग में, और पूरे कल्प भर चलेगा, वो इस आधार पर ही चलेगा कि मैं कितनी साक्षी दृष्टा हूं। अंत में हमारे मति इसी आधार पर ही होगी। परिस्थितियां तो सबके लिए ही होंगी, मानो हलचल आई, मकान गिरा, हाहाकार हो रहा है, लोग मर रहे हैं, सब कुछ है। परिस्थिति एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो ही होगी, लेकिन उनमें से कोई माला का मणका बन जाएगा, उनमें से कोई साधारण बन जाएगा, उनमें से बहुत अलग अलग पद के अधिकारी बनेंगे, परिस्थिति वही होगी। तो हम किस रीति से देख रहे हैं, जो जितना साक्षी दृष्टा होके देखेगा, मैं दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा ये दृश्य देख रहा हूं पॉजिटिव दृष्टिकोण से, और इसी आधार पर ही मेरा दृष्टांत लिखा जाने वाला है। बस ये पांच बातें जितनी साक्षी दृष्टा होके हमें हमारे साक्षी दृष्टा बनाने में हमें मदद करेंगी। अंत में ये ही काम आएगी उस सदगति के लिए। अगली बात, नेट रिजल्ट किस बात पर आधारित है? हाँ, यहां पर भी एक बार की बात है। बस देखो, बाबा को मदद, बाबा तो मदद करता है। हम इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे, 1964-65 की बात है, 67 में पास किया था, तभी नई नई प्रदर्शनी निकली थी, उस प्रदर्शनी में भी बहुत बिजी थे। नई प्रदर्शनी पहली बार किया, अगले दिन एग्जाम था, अगले दिन नहीं कुछ दिन के बाद ही, तो उतनी बढ़िया तैयारी नहीं हो पाई एक पर्टिकुलर पेपर में जितनी होनी चाहिए थी। तो बस एक दिन बाबा को, मतलब पढ़ाई की तैयारी भी कर रहे थे, बाबा को याद भी कर रहे थे, बाबा आपको ये करना है एग्जाम का, और पढ़ते पढ़ते थोड़ा नींद जैसी आ गई, ध्यान का तो पार्ट था नहीं। तो उसमें एक पेपर देखा, एग्जाम का पेपर आता है ना, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 क्वेश्चन, तो अच्छी तरह दिख गए। और देखने के बाद पहले फटाफट जैसी चेतनता हुई थोड़ा लिख लिया, फिर वैसे ही तैयार कर लिया। तो जिस पेपर में इतना उतना वेल प्रिपरेशन नहीं थी, उसमें बहुत अच्छे, सबसे ज्यादा मार्क आए, 96। तो क्यों? पेपर लीक आउट हो गया अपने को, है ना। तो भगवान ने जस्ट ऐसा, लेकिन बाबा ने यहां हम सभी को पेपर लीक आउट किया हुआ है। क्या क्या पेपर लीक आउट किया है, हैं? बहुत, एक सेकंड का भी खेल है पेपर का। बाबा ने सब कुछ क्वेश्चन पेपर बता दिया है, सिर्फ क्या नहीं बताया है, पेपर का टाइम नहीं, पेपर की जगह नहीं। उस दुनिया में तो बाकी सब होता है और पेपर मालूम नहीं होता, उल्टा होता है, किस हॉल में पेपर होगा, किस कॉलेज में होगा, क्या होगा, लेकिन पेपर क्या है वो नहीं होगा। यहाँ रिवर्स है कि पेपर कौन सा है वो मालूम है क्वेश्चन, लेकिन कब होना है, कैसे होना है, वो नहीं मालूम। तो इस रीति से बाबा ने जो बताया हुआ है ना, अंत समय हमें भी अगर ये आभास हो जाए कि बस अब मेरा ये अंतिम समय है, और तो जो भी पेंडिंग काम होगा ना, वो उधर ही बुद्धि जाती है अंत समय, ये काम रहा हुआ है, ये नहीं ये कर लेता तो ऐसा हो जाता। तो देखो, हम बाबा को जो हम पहले देखते थे, और बाबा को जब लास्ट में 17-18 तारीख को देखा, तो बाबा पहले से समेटता जा रहा था, कोई भी बात पेंडिंग नहीं थी। लेकिन 18 जनवरी को हमने देखा कि बाबा इधर आए, क्लास कराया बाबा ने, क्लास नहीं कराया उस दिन, सिर्फ योग कराया। और उसके बाद बाबा ने यीशु दादी को बोला, आज जितने पत्र हो वो सबके जवाब लिखवा लो, कोई भी काम पेंडिंग ना रह जाए, बचा हुआ ना रह जाए। तो यीशु दादी ने सारे पत्रों के उत्तर लिखवा लिए। जो नक्की लेक के पास हमारा म्यूजियम है, वो अभी उस समय वो मकान लेने की बात चल रही थी, कई दिन से पेंडिंग पड़ी हुई थी। बाबा ने कहा, बच्ची वो वाला फाइल लाओ, और बाबा ने उस दिन उसे भी क्लियर कर दिया। जितने जितने काम थे, कुछ भी अधूरे, क्योंकि बाबा को जैसे अंतिम कर्मातीत अवस्था का एक ये भी लक्षण है कि जब कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे तो हमें आभास हो जाएगा, और बस कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले से ही हम अपने काफी काम निपटाते चले जो हमारे पेंडिंग, जहां हमारी बुद्धि जाने की संभावना है। और अंत में कई बार यहां पर भी भोग लगता है, बहुत आत्माएं जाती हैं इधर उधर, पूरे विश्व भर से आत्माएं, तो काफी ये बताती हैं, कई दिन से मैं ये सोच रही थी आत्मा की भाई ये काम करना है लेकिन मैं टालता रहा, कल कर लूंगा, कल देखो मुझे आना पड़ा, ये शरीर छोड़ दिया, अब मैं क्या, बहुत आत्माएं पछताती हैं। तो इसीलिए अभी भी कोई भी अपना देखो, लौकिक में भी ना, लौकिक में कोई स्थूल कोई सूक्ष्म काम पेंडिंग तो नहीं रहा है, कोई बिजनेस का पार्ट, क्योंकि कहां जितना फैलाव किया होगा बुद्धि का, वहीं बुद्धि जाके अटकेगी और वो हमारी गति नहीं होने देगी। जहां पर भी कोई संबंध में है, धन में है, बिजनेस में है, सास बहू का कि भाई चाबी का, कोई भी मकान का, किसी भी चीज का, वहां पर वो बुद्धि अटकने की संभावना है। और उस एक छोटे से काम की वजह से अंत में जो गति होनी चाहिए वैसी गति नहीं होगी। तो पहले तो ये सारा वाइंड अप करते चले, जो बाबा करता जा रहा था, बाबा का देखा और फिर भी एक दो जो काम रह गए थे बाबा ने अंतिम दिन वाइंड अप कर लिया, जो सारे पत्र भी लिखवा दिए, सारा वो करवा दिया। और सबसे बड़ी बात, रोज रात को क्लास यहाँ पर 9:45 होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने 7 बजे से पहले ही 6:30 के करीब ही जमुना प्रसाद भाई को बोला कि आज बाबा क्लास अभी जल्दी कराएगा। तो देखो ये अंत समय में, और बाबा ने ये अनाउंस करवा दिया, सब लोग भोजन करके आए और सबको बाबा ने कहा सब भोजन करके आए जल्दी भी, क्योंकि बाबा को मालूम था कि आज बच्चों से जैसे मेरा अंतिम मिलन होगा, तो इसीलिए उसके बाद तो अगर शरीर छोड़ने के बाद तो फिर कोई भोजन करेगा नहीं, इसीलिए सब भोजन और बाबा भी तैयार होके 7 बजे शाम को 18 जनवरी को रात्रि क्लास में आ गए। तो हमें ये कब होगा, जब बुद्धि जितनी क्लियर और क्लीन होगी, टचिंग, शिव बाबा टचिंग सबको देता है लेकिन कोई कैच कर लेते हैं, उसके अनुकूल काम कर लेते हैं, कोई अगर पूरा नहीं कर पाते, क्लैरिटी नहीं होती है तो नहीं हो पाता, चांस को मिस कर लेते हैं। और ये चांस बार बार तो आना नहीं है, अंत मते सो गति वाला, अंत में अंतिम क्षण तो एक ही बार होना है। इस कारण से बुद्धि में क्लैरिटी, क्लीन और क्लियर बुद्धि हमारी जितनी होती जाएगी तो उस समय आभास हो जाएगा भीष्म पितामह की तरह, उसका गायन है ना, उसको आभास था। तो ऐसे ही हम सभी भीष्म पितामह की तरह हो, अंत में हमें भी आभास हो, जिससे अगर कुछ बात रही भी हुई है वो बात जैसे हमारी शरीर छोड़ने से पहले क्लियर हो जाए, और बस हम कह बाबा बस, जैसे ब्रह्मा बाबा ने ना उस दिन आए क्लास में बाबा, और वैसे आपने देखा होगा हिस्ट्री हॉल में बाबा का वहां, तो अभी तो 2 संदली है, पहले 3 संदली पड़ी रहती थी, एक में बाबा बैठते थे, एक में मामा बैठती थी और बीच वाली खाली रहती थी, जो पार्टी आती थी बच्चे आते थे वो आके तब पहले अनुभव वगैरह सुनाया करते थे, परिचय दिया करते थे, और जब पार्टी जाती थी एक हफ्ता पार्टी रुकती थी और बस उससे पहले वो सुनाया करते थे हम क्या लक्ष्य लेके जा रहे हैं और क्या हमारा जीवन में आगे के लिए हमारा पुरुषार्थ होगा आदि आदि। और बाबा के चित्र के पास ही एक ट्रांसलाइट का चित्र, श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, वो रहता था। और कई बार बाबा को जब खांसी आती थी ना तो हमें लगता था जैसे बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है, तो खांसी रूपी परिस्थिति आती थी और बस खांसते खांसते कई बार बाबा की आंखें भी गीली हो जाती थी। हम लोगों को दिल में होता था कि अरे बाबा को कष्ट हो रहा है चाहे, लेकिन दूसरे ही क्षण देखते थे बस बाबा क्या चित्र की तरफ इशारा करके, देखो बच्चे हाँ आज ये पुराना शरीर है, पुराने तत्वों का बना हुआ है, कितनी तकलीफ ये होती है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, कितना नई दुनिया होगी, सदाबहार मौसम होगा, कोई शरीर से तकलीफ नहीं। तो स्वस्थिति को बाबा इतनी मजबूत करते थे, कि वो परिस्थिति खांसी रूपी परिस्थिति पीछे रह जाती थी और जरा सी देर में ही फिर खांसी कहाँ गई पता ही नहीं चलता था, फिर बाबा उसी तरह से मुरली चलाने लगते थे। तो एक ये बात, चौथी बात ये रखनी है हमें कि कोई भी परिस्थिति आए हमारे सामने, संबंधों की आए, कोई स्वास्थ्य की आए, किसी मान अपमान की आए, कोई धन की आए, कोई भी, लेकिन हम स्वस्थिति को इतनी मजबूत कर लें उस परिस्थिति को पीछे छोड़ दें। इसीलिए परिस्थिति के वशीभूत ना हो, ये प्रैक्टिकल बाबा का, और उस दिन भी बाबा का देखा कि बस बाबा आए, क्लास कराया बाबा ने और मैं बाबा के सामने ही बैठा हुआ था उस हिस्ट्री हॉल में, क्योंकि बाहर के बहुत कम लोग थे। तो देखो क्या लक्षण होता है कर्मातीत अवस्था की आत्मा का, क्योंकि बाबा ने कहा ये सिर्फ वो ही नहीं, ये राजधानी स्थापन हो रही है, हम सब बाबा की राजधानी में आने वाले लोग हैं जितने भी बैठे हैं। तो वही फिर द्वापर युग से बाबा के, कृष्ण के और सबके भक्त होंगे, वही मंदिर बनवाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। तो बस बैठे बैठे हमारे मन में एक संकल्प आया, देखो है तो प्राइवेट बात लेकिन पर्सनल बताते हैं कि कैसे भक्ति मार्ग में तो होता ही है, लेकिन जब कर्मातीत अवस्था होती है तो मन में जस्ट संकल्प आया, अरे क्या ये अच्छा हो बाबा कुछ मेरे लिए बोले, मेरे हमारे लिए कोई पुरुषार्थ के लिए किसी के लिए बाबा कुछ बोले। होता है ना अभी भी जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो बैठे हुए तो इतने सारे होते हैं 20-25 हजार, लेकिन मन में संकल्प आता है नए होते हैं विशेष करके कि अरे मुझे स्टेज पर जाने को मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, होता है ना दिल में। तो ये दिल में तो तब उस समय तो ये छोटा हॉल था, सब सामने ही बाबा के बैठे, तो मन में जैसे ही संकल्प आया तुरंत ही कुछ सेकंड में ही तुरंत बाबा तक, जैसे वो क्योंकि बाबा की इतनी क्लैरिटी थी, अपने कर्मातीत अवस्था के एकदम निकट थे और मन जीते जगत जीत स्थिति बन चुकी थी कि उनके किसी के भी मन में कोई संकल्प होता था तुरंत बाबा कैच करके उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते थे। तो उस दिन ये अनुभव हुआ, मन में संकल्प आया तुरंत बाबा तक पहुंचा होगा, क्योंकि बाबा तो बिल्कुल कर्मातीत अवस्था के निकट, तो बाबा ने नाम लेकर ही कुछ महावाक्य उच्चार दिए जो जीवन में हमेशा के लिए जैसे गाइडलाइन बन गए, बहुत अच्छे महावाक्य। तो उस रीति से ये पार्ट इसलिए बता रहे हैं कि अंत में दुनिया के सम्मुख हम सभी ही ब्रह्मा बाबा हैं, उनके गाइड हैं। तो जैसे भक्त लोग हमारे सम्मुख आएंगे उनके अंदर भी बहुत सारी मनोकामनाएं होंगी, वो हम तब पढ़ सकेंगे जब हमारे अंदर हम खुद इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, तो दूसरे की इच्छाओं को भी पढ़ के उनको पूर्ण कर सकेंगे और तब तथास्तु का वरदान उन्हें दे सकेंगे। तो एक ये देखा उस दिन, क्योंकि अंत में ना बाबा की ये सारी पूरी वो थी, बाबा को जैसे आभास, बिल्कुल बाद में हम लोगों ने देखा कि हाँ बाबा को तो जैसे बिल्कुल आभास हो गया था भीष्म पितामह की तरह कि अब हम बस में जा रहा हूं। और उसके बाद बाबा को उस दिन एक बार भी खांसी नहीं आई, नहीं तो बाबा के बहुत उन दिनों तो जनवरी का महीना अति ठंडी, तो लेकिन सुबह भी बहुत तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन उस दिन शाम को ना क्योंकि कर्मातीत अवस्था बन गई थी बाबा की। मुझे याद है जब ममा ने शरीर छोड़ा था तो उस वक्त बाबा ने, जब ममा चली गई बाबा के पास, शरीर तो यहीं रखा हुआ था, तो ममा बाबा के पास चली गई, तो जब भोग लगाया और उन सब में ये सब आया था, तो उसमें बाबा ने कहा बच्ची तुमने कर्मातीत अवस्था का अनुभव किया? तो मामा ने कहा नहीं बाबा, तब तो इतनी क्लैरिटी भी ज्ञान की नहीं थी 1965 में। तो बाबा ने कहा जाओ बच्ची, तुम्हारा शरीर रखा है, जाओ और कर्मातीत अवस्था क्या होती है उसका अनुभव करके आओ। तो मामा ने कहा ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मामा वतन में फिर पहुंचे तो बाबा ने कहा कि बच्ची अनुभव किया कि नहीं बाबा? क्यों? क्योंकि बाबा जब मैं गई शरीर में तो शरीर तो बिल्कुल ठंडा हो चुका था, उसमें कोई भी चुरपुर नहीं हुई, कोई भी स्थिति का अनुभव। तो हाँ बच्ची देखो, यही बाबा बताना चाहता है कि जब कर्मातीत अवस्था होती है तो ऐसा नहीं कि तुरंत शरीर छोड़ देते हैं, फिर फायदा ही क्या हुआ, कर्मातीत अवस्था का अनुभव ही क्या हुआ। कर्मातीत अवस्था का अनुभव के काफी समय, जैसे मुझे एग्जैक्टली तो मालूम नहीं, लेकिन कुछ घंटे तक और काफी कुछ समय तक उस स्थिति का अगर अनुभव नहीं किया तो वो कर्मातीत अवस्था का फायदा क्या हुआ। तो इसीलिए कर्मातीत अवस्था का अनुभव करना है बच्चों को, उसके बाद फिर वो आत्मा शरीर छोड़ के यहां आती है। तो इसीलिए कर्मातीत अवस्था का, जब बाबा तो कर्मातीत होके गया तो बाबा को लास्ट समय ये सारा का सारा चूंकि अनुभव बहुत क्लियर हो रहा था, तो उस दिन ना तो बाबा को एक बार खांसी आई। वो इस बात का ही अनुभव, वो इस बात को बताती है कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे तो क्या होगा, हमारे सब कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेगा और जितने भी कार्मिक अकाउंट होंगे, कर्मों का हिसाब किताब सब क्लीन हो चुका होगा। इसीलिए ना शरीर को कोई व्याधि होगी, कोई तकलीफ होगी, ना कोई अनुभव, ऐसा नहीं। उस अंतिम कुछ क्षणों में माने मे बी आवर्स टुगेदर, तो उन समय में कर्मातीत स्थिति की, और तब हमारी ऐसी स्थिति होगी, हर चीज बिल्कुल स्पष्ट होगी कि कहां क्या हो रहा है। तो इसलिए बाबा ने, ब्रह्मा बाबा तो उसी स्थिति में था, तो अंत में कर्मातीत अवस्था बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। हमारे मन में जो संकल्प हुआ बाबा ने पढ़ा, तुरंत वहां मुंह से बोल करके मुरली में और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। उसके बाद बाबा उठे, उठ करके बस सामने प्रकाशमणि दादी बैठे हुए थे, तो बाबा ने जब थोड़ा योग भी कराया तो बार बार दृष्टि बाबा की दादी के ऊपर बहुत देर तक पड़ती थी। दृष्टि बाबा तो योग कराते थे तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी ना थोड़ा थोड़ा दृष्टि देके ऐसे बाबा की नजर घूमती थी। बाबा कहते थे हमेशा कि मेरे सामने सिर्फ यही बच्चे नहीं बैठे हैं जो 25-50 बैठे हैं, बल्कि मेरे सामने विश्व की सर्व आत्माएं हैं, मैं हर आत्मा को देख रहा हूं। लेकिन सबको देखते हुए बार बार बाबा की दृष्टि दादी की तरफ आती थी, दादी की तरफ ज्यादा देर तक बाबा दृष्टि देते थे, योग करते थे, फिर बाबा थोड़ी सी दृष्टि सबको देते थे, बार बार बाबा की दृष्टि दादी की तरफ। बाबा उठे और फिर बस जाके कहा कि अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। देखो कभी भी बाबा ने ये शब्द नहीं बोले छुट्टी लेता है, विदा लेता है। तो जब ये आभास हो जाता है ना वो, तो अंतिम क्षणों में ब्यूटी तो यही है, अगर हम भी दुनिया वालों की तरह ही मर गए, अर्थक्वेक हुआ, फ्लड आया, सुनामी आई, अब बिल्डिंग गिरी और हम भी उसमें चले गए, तो क्या फर्क रहा दुनिया में और हम में। बाबा कहता है ऐसी अनुभूति होनी चाहिए, इच्छा जो भीष्म पितामह को थी, इच्छा मृत्यु का वरदान, हमारी इच्छा के बिना मृत्यु भी हमारे पास ना आ सके। भाव क्या है, मृत्यु आए उससे पहले ही जाना तो सबको है, लेकिन उससे पहले हमें अनुभूति हो जाए। और अभी भी हम लोग जब इंजीनियरिंग में पढ़ते थे ना, तो अर्थक्वेक के ऊपर बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, पढ़ाया गया था हम लोगों को, तो बताया गया था, और अभी भी दुनिया के सब वैज्ञानिक बोलते हैं कि जब वो अर्थक्वेक आता है, कोई भी दुनिया का इंस्ट्रूमेंट उसे एक सेकंड पहले भी नहीं बता सकता अर्थक्वेक आने वाला है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो सांप है, छिपकली है जमीन के अंदर, जो दोज विच आर इन हार्मनी विद नेचर, जो प्रकृति के साथ, जिन्होंने अपनी प्रकृति को बाय नेचर, उन्होंने कोई पुरुषार्थ की बात नहीं है, जिनकी अपनी प्रकृति, बाहर के ये पांच तत्वों की प्रकृति, ये विज्ञान में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, तो उनको आभास हो जाता है, वो तुरंत ही कुछ मिनट पहले ही अपने विलों से निकल आते हैं, क्योंकि प्रकृति में क्या हलचल होने वाली है उनको आभास होता है। इस पर बहुत स्टडी हुई है और कुछ ये जानवर ऐसे होते हैं जिनको ये, तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि आप बच्चों को भी ना ऐसा अनुभूति होगी कि बस अब मैं जैसे शरीर छोड़ने वाली हूं आत्मा, और वो कब होगी? अंत मते का एक गायन यह है कि हमारी अपनी प्रकृति बाहर की प्रकृति के साथ पूरा का पूरा मेल खा ले, और पूरा जब मेल खा लेगी दोनों प्रकृति एक ही बैलेंस हो जाएंगी तो क्या होगा, बस फिर बाहर की प्रकृति में कुछ भी हलचल होगी वो हमारी प्रकृति जो है तुरंत रीड कर लेगी, और बाहर की प्रकृति हमें मदद करेगी। इसीलिए बाबा कहता है बाकी सब तो काम हम सब कर रहे हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा वो सब, लेकिन उसके बाद अब आवश्यकता ये है, क्योंकि ये प्रकृति से बना शरीर है, भाई ये शरीर हमें अंत तक पूरा सहायक बन जाए। जो दादी जानकी को बाबा ने वरदान दिया है, क्या कौन सा वरदान है मालूम है? देखो दादी जानकी 2000 का साल था, न्यू मिलेनियम ईयर, दादी जानकी अहमदाबाद में थी, बहुत सीरियस थी, डॉक्टरों ने भी बोल दिया था, सब जगह इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी, और यहाँ बाबा आए हुए थे 31 दिसंबर को, तो बाबा को ये सूचना दी गई थी, बाबा ऐसे दादी जानकी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है बहुत। तो बाबा ने क्या बोला, नहीं बच्चे प्रकृति उसका अंत तक पूरा साथ देगी, उसे कुछ नहीं होने वाला। 31 दिसंबर 2000 की बात है, वो वहां बैठे अहमदाबाद में, यहाँ बाबा अव्यक्त बाप दादा आए थे, बस उसके बाद रिकवरी हुई, आज उसके बाद देखो 17 साल भी निकल गए, फिर भी मतलब एज के हिसाब से प्रकृति साथ देगी, यानी ये शरीर जो है पांच तत्वों का बना शरीर, ये प्रकृति तो हम सब भी चाहते हैं प्रकृति हमारा अंत तक साथ दे, तो उसके लिए कुछ दो तीन टिप्स हैं जो कई बार, वैसे दादी से कई बार हम पूछते हैं, हम सब लोग यहाँ बैठते हैं कि दादी आपको ये बाबा ने जो वरदान दिया तो कैसे आप करते हो? तो एक तो ये बात कि रोज हम प्रकृति को दान दें, क्या अपने संकल्पों का, और एक उससे पहले एक बात समझ लें कि प्रकृति का मतलब एक ह्यूमन नेचर होती है, मानव प्रकृति स्वभाव, और एक ये प्रकृति के पांच तत्व, तो इसीलिए ये प्रकृति के तत्वों को हम अपना मित्र बना लें, जिससे क्या होगा कि जो हमारी अपनी अंदर की प्रकृति है ना, ये जो है अंत समय प्रकृति की तरफ से जो आपदा आने वाली होगी उसका हमें पहले से ही आभास हो जाएगा, और हमारे पैर उधर ही बढ़ेंगे जहां सेफ्टी हो। ये बहुत बहुत सारे उदाहरण हैं, यहाँ तो समय के अभाव में सब नहीं, चाहे लातूर का अर्थक्वेक हुआ उधर हुआ, गुजरात का अर्थक्वेक वगैरह का ये बात हुई, चाहे कहीं सुनामी आई साउथ में, कितनी घटनाएं ऐसी हैं कि बाबा के उन बच्चों को जिनको क्लैरिटी थी वो समय पर वो मिले, कुछ क्षण पहले ही बस उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया, नहीं जान करके अरे ये होने वाला नहीं, उन्हें भी मालूम नहीं होगा, लेकिन ऑटोमेटिकली उनके पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, और पीछे विनाश होता रहेगा। तो उसका वो ट्रिक क्या है, एक तो ये कि प्रतिदिन हम कम से कम 5 मिनट भी रोज प्रकृति को दान दें, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, किसी स्थान पर जहां पर भी ये पांचों हो, आकाश सब जगह होता है, पृथ्वी होती है, कहीं पर जल का होता है, सूर्य जहां हो अग्नि का प्रतीक, और वायु तो होती है, बस और कैसे दान दें वो अब संकल्प की बात है। तो एक तो हम इन तत्वों को अपना मित्र बना लें अंत मते के लिए, कैसे मित्र बनाएंगे, मित्रता किनके बीच में होती है, जिनके संस्कार लगभग समान होते हैं, शराबी की शराबी से मित्रता होगी, ज्ञानी की ज्ञानी से, योगी की योगी से, ऐसे तो इस तरह इन तत्वों को हम अपना मित्र बना लें। कैसे मित्र बनाएंगे तत्वों को, उनके संस्कारों को हम, उनके गुणों को हम धारण कर लें, हमारे गुण और उनके गुण मैच करें। मानो ये जल है, हा? जल का सबसे बड़ा गुण क्या है? शीतलता। और भी इससे भी बड़ा गुण है एडजस्टमेंट। जल हर जगह एडजस्ट हो जाता है। गिलास में लो गिलास में, कटोरी में लो कटोरी में, थाली में लो थाली में, चम्मच में, क्योंकि फ्लेक्सिबल है। तो ऐसे ही हम, हमारा अगर संस्कार ऐसा होगा कि हम हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर चल सकें, कोई कितने भी कड़े संस्कार का वो हो, हम उससे एक्सपेक्ट ना करें वो बदले, बल्कि हम एडजस्ट होके अगर उससे चल सकेंगे, एडजस्टमेंट का ये गुण अगर हमने धारण कर लिया, तो जल का चाहे जितना भी फ्लड आएगा, सुनामी होगी, जितनी भी प्रॉब्लम जल की होगी, लेकिन जल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि जल की तरह अगर हमने शीतलता का गुण धारण कर लिया, ये एडजस्टमेंट का गुण धारण कर लिया, और जल में कौन सा गुण होता है? जल सदा आगे बढ़ता रहता है। जल के सामने बोल्डर भी आएगा, बहुत बड़ा पहाड़ भी आएगा, जल ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा वो अलग हो, वो यूं 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 घूम घाम के निकल जाएगा, अपना रास्ता बना लेगा। ऐसे हमारे सामने कोई भी समस्या है, भाव स्वभाव कोई भी सम्मत किसी भी चीज की, लेकिन हमारा आगे बढ़ने की गति सदा कायम रहे, हम रुके नहीं उसकी वजह से। और जल का क्या गुण, इसका पहचान क्या होगी? जल अगर कहीं आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाता है तो क्या होता है? उसमें बदबू आने लगेगी, कीड़े मक्खी मच्छर ये सब होंगे। तो ऐसे ही अगर हमारा आगे बढ़ना कहीं रुक गया है, तो ये छोटी मोटी चीजें, कहीं ईर्ष्या है, द्वेष है, कोई बदले की भावना है, कोई निगेटिव फीलिंग है, ये सब जो बातें हैं, अगर ये मेरे अंदर आती हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं स्टैग्नेट हो गया हूं, रुक गया हूं, मेरा आगे बढ़ना रुक गया है। तो ये अंत मते सो गति के समय हमारे लिए बहुत बाधक होगा। आगे बढ़ना रुक गया तो उससे क्या होगा? बस आत्मा जो है ये चाह रही है निकलना, लेकिन अगर ये बात है तो वहीं पर ही जैसे बुद्धि अटक जाएगी। और पहले मुरलियों में आता था, अभी तो पता नहीं, कुछ ऐसा आता था, जहां जीत वहां जन्म, ऐसा कुछ आता था। तो जहां हमारी अल्टीमेट टोटल विक्ट्री होगी, वहीं पर ही जन्म, अर्थात पूरे के पूरे कर्मातीत विकर्मा जीत होके जन्म। तो इसीलिए एक ये आवश्यक है देखना कि प्रकृति के साथ हमारा कितना एडजस्टमेंट हो, क्योंकि बाकी सब ज्ञान योग धारणा सब कर रहे हैं, लेकिन सबसे पुराना से पुराना संबंध तो हमारा इन पांच तत्वों से है। पहले जन्म से लेकर 84वें जन्म तक इन्हीं पांच तत्वों से ये शरीर बना है। तो इसीलिए इस प्रकृति को हमें अपने अनुरूप करना है, इससे फ्रेंडशिप करनी है, कहीं पर भी हमारे संस्कार और इसके संस्कारों में कहीं पर क्लैश ना हो। तो जल का ये संस्कार है, और सबसे बड़ा एक और संस्कार है, जल को जब अग्नि पर रख देते हैं ना, उबल जाता है पानी या कुछ, लेकिन उसे नेचुरल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस सिर्फ उतार के उसे रख दो और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, अपने आप ही थोड़े समय में अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएगा। ऐसी हमारे सामने भी कभी कोई परिस्थिति विकारों रूपी अग्नि की ऐसी आती है कि जब हम अपने नेचुरल वे से अलग हो जाते हैं, तो क्या होना चाहिए? उस परिस्थिति से हम अपने को डिटैच कर लें, अलग कर रहे हैं मानसिक रूप से, स्थूल रूप से, तो उससे क्या होगा? थोड़ी देर में आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, वो आत्मा ओरिजिनल अपने रूप में आ जाएगी। टाइम इज द बिगेस्ट हीलर कहा जाता है। लेकिन होता क्या है, हमारा ईगो जो है ना, कई बार हमें वर्तमान परिस्थिति से डिटैच होने नहीं देता, अंदर का जो थोड़ा भी सूक्ष्म अहम भाव है। तो इसीलिए एक तो ये हम अलग कर ले। तो जल के ऐसे ही आप पांच छह गुण लाना बुद्धि में, ये जैसे एडजस्टमेंट है, शीतलता है, आगे बढ़ने का है, देखो जल कितना, सुबह उठते हैं बस आंख धोई वगैरह, फ्रेशनेस आ जाती है। यहाँ पर जब आते हैं دادیوں سے ملتے ہیں, جب ساکر بابا مما تھے ملا کرتے تھے, ایک دم جتنی بھی تھکان ہوتی تھی کچھ سب فریش ہو جایا کرتے تھے. اور یہی اب ہمارے سے یہ سب سننے کا بھاؤ یہ ہے, آگے آنے والی جو بھی بابا کی رچنا ہے وہ ہمارے سے بھی ایسا ہی انوبھو کرے جو ہم نے بابا مما سے دادیوں سے ورشٹھ بھائی بہنوں سے جو لیا ہے. بس تھکان مانسک تھکان سب کی دور ہو جائے. تو یہ تو ہے خاص کر کے جل کا گن دھارن کرنے کا. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ انت سمے میں جب یہ سب سونامی ہوگا فلڈ ہوگا یہ کوئی بھی ہماری مرتیو کا کارن نہیں بنے گا, کیونکہ ہم نے فرینڈشپ کر لی تتو سے, وہ تتو ہمیں کسی بھی طریقے سے آٹومیٹیکلی ہماری بدھی جتنی کلین اور کلیئر ہوگی ٹچنگ ہوگی آٹومیٹیکلی اور ہمارے پاؤں سیفٹی کی طرف بڑھ جائیں گے. بہت ساری ایسی گھٹنائیں ہیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں جیون میں جو نیچر کے بہت قریب ہوتے ہیں. اسی طرح پرتھوی کا سب سے بڑا گن کون سا ہے, بوجھا بہت اٹھانا اور سہن شکتی. اور پرتھوی جو ہے داتا ہے. دیکھو پرتھوی ہر چیز دیتی ہے, ان دیتی ہے, جل دیتی ہے, سبزی دیتی ہے, پھل دیتی ہے, جو بھی چیز ہے پرتھوی سے ہی ملتی ہے, داتا ہے پرتھوی. تو پرتھوی کا اگر ہم نے داتا پن کا یہ گن دھارن کر لیا, اب ہم پرتھوی کی طرح یہ چیزیں تو دے نہیں سکتے سب کو, اس کی لمیٹیشن ہے, ہماری آرتھک استھتی کیسی ہے وہ سب, لیکن وہ چیز ہم دیں جن میں کوئی بھی اکنامک کنسیڈریشن نہیں ہے, پیسے کی بات نہیں ہے, پریم ہے, سہانوبھوتی ہے, ایک دوسرے کے پرتی آدر بھاؤ ہے, ستکار ہے, کوئی بھی آئے ہمارے در سے خالی نہ جائے. دیکھو آج مدھوبن میں ہی آتے ہیں اتنا دور دور سے, ہر ایک کو چاہے چھوٹی بھی گفٹ ہو گفٹ ضرور لے کے جاتے ہیں. تو ایسا ہے کہ ہم بھی پرتھوی کا اگر یہ گن دھارن کر لیا داتا پن کا, تو کیا ہوگا پرتھوی میں جتنے ارتھ کویک آئیں گے بہت ہلے گی, بھوچال ہوں گے, چاروں طرف تراہی تراہی ہو جائے گی, لیکن سمے پر یہ ہمیں سگنل مل جائے گا اور یہ ہمارے پیر سیفٹی کی طرف آٹومیٹیکلی بڑھ جائیں گے. انٹرنیٹ پر آیا تھا کیلیفورنیا میں امریکہ میں کچھ سال پہلے بہت بڑا ارتھ کویک آیا تھا کیلیفورنیا میں امریکہ میں, تو چاروں طرف بہت بہت وناش ہوا, لیکن ایک پروفیسر تھا انگلش پروفیسر, اس کا ریٹریٹ سینٹر جیسا تھا, اس کا مکان تھا بنگلہ, چاروں طرف تو وناش لیکن اس کے مکان کو کچھ بھی نہیں ہوا, شیشہ بھی نہیں کریک ہوا. تو سارے میڈیا والے بعد میں اس کے پاس گئے کہ بھئی آپ نے ایسا کون سا میٹیریل یوز کیا ہے کہ آپ کے مکان کو تو کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہوا. تو اس نے کہا میں نے تو کوئی خاص نہیں, جو سب یوز کرتے ہیں وہی کرا ہے. کہ نہیں کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوگی تبھی تو آپ کا ڈیمیج نہیں ہوا. تو اس نے بتایا میں صرف اتنا کرتا ہوں کہ میں روز پرتھوی سے وارتالاپ کرتا ہوں. کوئی وہ بیکے نہیں تھا, انگریز نہیں تھا, اپنے حساب سے اسپرچل تھا ریلیجیس تھا. تو میں روز پرتھوی سے وارتالاپ کرتا ہوں کہ ہے دھرتی ماتا آپ ماں ہو, ہم آپ کے بچے ہیں, میں آپ کو بہت کشٹ دیتا ہوں جب آپ کو کھوتا ہوں, مجھے معاف کرنا, لیکن یہ تو میری مجبوری ہے اور اس ریتی سے میں آپ میری ماں ہو, ماں کبھی بچے کو دکھ نہیں دے سکتی ہے, میں بھی یتھا سمبھو آپ کو یہ تو وارتالاپ کمیونیکیشن میرا مدر ارتھ سے ہوتا ہے. وہ اپنے ریتی سے بتا رہا تھا, کوئی بی کے نہیں لیکن اپنے ریتی سے. تو یہ ہے کہ جتنا ہم وارتالاپ, کیونکہ یہ تو دیوتا ہے, جل دیوتا, اگنی دیوتا, وایو دیوتا, دھرتی ماتا, یہ سورج دیوتا, تتو یہ جڑ تتو نہیں بلکہ یہ ہی ان کی چیتنیہ روپ میں اتنی پوجا ہوتی ہے, تو ضرور انہوں نے ہم آتماؤں کو انیک بہت سکھ پردان کیا ہے, تبھی تو ان کی یادگار ان کو سب مانتے ہیں. تو اسی طرح یہ پرتھوی کا ہے, میں جلدی سے بتا دیتا ہوں. وایو میں کون سا گن ہوتا ہے مکھیہ, ٹھنڈک, اور وایو ہلکی ہوتی ہے, हर चीज को ऊपर उठाती है, पृथ्वी जैसे हर चीज को नीचे खींचती है, वायु ऊपर हल्की होती है, जो हल्की चीज होती है वो ऊपर उठती है। इसी तरह हम भी अगर सदा हल्के रहे, परिस्थितियां आएंगी, पेपर आएंगे, लेकिन वो हमें भारी ना कर दे, तो ये देखना है। तो उससे क्या होगा कि अगर हमें सदा हल्के रहने का गुण आ गया तो साइक्लोन आएंगे, 300-400 किलोमीटर की स्पीड से भी वायु बवंडर होंगे, लेकिन ये वायु हमें नुकसान नहीं कर सकती, प्राण वायु है। देखो हम वायु तो लेते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो प्राण वायु है, हमारे प्राण मेंटेन करती है। इसी तरीके से जीवन में अगर हमने ये गुण धारण कर लिया सदा हल्के रहने का, भारी ना हो, तो क्या होगा, ये वायु अंत समय में भी हमें पूरी की पूरी मदद करेगी। और इसी प्रकार से सूर्य में क्या गुण है, पिछड़ा, सूर्य में रूप परिवर्तन करने का गुण है। सूर्य माने अग्नि, अग्नि में कोई चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही हमारे सम्मुख कोई आए और हमारी ऐसी ज्वालामुखी अग्नि जली हुई हो तो क्या होगा, ज्वालामुखी की तरह, तो जो कोई भी आएगा उसका रूप परिवर्तन हो जाए। बाबा ने कहा रोता हुआ आए हंसता हुआ चला जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराता हुआ चले जाए, दुखी आत्मा आए सुख की अनुभूति करता जाए। तो ये सब कब होगा, उसका रूप परिवर्तन तब कर सकेंगे जब हम अपने अंदर जो है ना ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप हमारा रूप होगा। ये बाबा मामा में देखा करते थे हम लोग, किस प्रकार से कई बार बाबा के सम्मुख बहुत प्रश्न लेके जाते थे, बस बाबा ने दृष्टि दी भूल जाते थे, एक भी प्रश्न ही याद नहीं आता था, सारा जैसे समाधान हो जाता था। क्यों, क्योंकि बाबा क्या स्थिति ऐसी थी। इसी तरह अंतिम तत्व कौन सा, आकाश, आकाश में कौन सा विशेष गुण है, विशालता महानता। ऐसे ही बाबा ने कहा आकाश की तरह आप महानता का गुण ऐसा धारण करो, किसी की कोई कमी कमजोरी को स्थान नहीं दो, कोई भी अगर दिखती भी है क्षमा का भाव, हरेक को क्षमा, महान आत्माओं का सबसे बड़ा गुण होता है क्षमा का। बाबा में भी देखा, मम्मा में, सब में क्षमा का भाव, दादियों में तो खास करके हमने प्रकाशमणि दादी के साथ बहुत रहे, क्षमा का भाव। तो जितना ये गुण होगा क्षमा का, तो क्या होगा कि आकाश मार्ग से आने वाले जितने भी विनाश के साधन होंगे, रॉकेट, मिसाइल, बम वगैरह, वो कोई भी आपकी हानि नहीं कर सकते, क्योंकि आकाश को हमने मित्र बना दिया। खैर ये तो सब्जेक्ट मेरा समय हो गया है, इसीलिए मैं आपसे इस बात में, जिसके भी व्यक्तिगत कोई भी प्रश्न हो ना तो जरूर बाद में पूछ सकते हैं। आपने कुछ हाथ खड़ा कर रहे थे, बाद में बताएंगे, अभी तो बहन जी टाइम, हाँ बोलिए। तो बस तत्वों से, और ब्रह्मा बाबा में ये देखा, लास्ट बता दूं बस, जब 18 जनवरी को बाबा मुरली चला के अपने कमरे में गए तो बस दादी के हाथ में हाथ, और बाबा ने उस दिन मुरली में बोला था एक दिन पहले कि मधुबन आते हो यहाँ बेहद है, यहाँ बहुत टाइम है, यहाँ खूब घूमो और बाबा को याद करो। तो बाबा की मुरली सुन के हम ऊपर टहल रहे थे हिस्ट्री हॉल के ऊपर ही, तो हमने देखा सडनली जमुना प्रसाद भाई साइकिल पे एकदम बाहर जा रहे हैं, रात को 9:30-9:30 की बात होगी शायद। तो मैंने पूछा अरे आप कहाँ, डॉक्टर को बुला लाओ, बाबा का तबीयत ठीक नहीं लगता। तो वो गया, हम भी तुरंत उठ के पीछे की तरफ गए और वहां पर आइए दे, तो वहां देखा तो बस दादी के हाथ में हाथ बाबा का, और बाबा ने जैसे देह त्याग किया। लेकिन ब्यूटी क्या रही कि देखो हमारे सामने डॉक्टर भी आए हैं कि बाबा 18 जनवरी को शरीर छोड़ा और 18 की रात, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को बाबा ने शरीर छोड़ा, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता रहा, वैसे ही, कोई दुर्गंध भी नहीं, क्योंकि कोई इंजेक्शन वगैरह भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं, लेकिन पूरा बाबा का, ये है देखा शरीर से भी कि प्रकृति पर विजय का प्रतीक। तो इसी तरह बाबा ने हम बच्चों को भी यही शिक्षा दी है कि आप बच्चों को भी प्रकृति पर विजय प्राप्त करते। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। रवि मोहन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बाबा की प्रैक्टिकल जीवन के आधार से अंत मते सुगते इस विषय पर स्पष्ट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।